बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिहि ताहिरीन अस्सलाम वालेकुम। बेसत ख़बरनामे में खुश आमदीद। 15 मार्च 2017 और 16 जमादी उसानी 1438 हिजरी के दिन की अहम खबरों के साथ मैं हूं अम्मा रजा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अदालत पर खुदकुश हमले में वकला समेत 35 अफराद जान बहक। जनूबी कोरिया में अमरीकी थॉर्ड मिज़ाइल सिस्टम की तनसीब पर चीन की जानिब से अमरीका को सख्त इक्तसादी पाबंदियों की धमकी। दुनिया की नज़रें हॉलैंड के इंतखाबात पर, इस्लाम मुखालिफ ग्रीट विल्डर्स भी इंतखाबात में उम्मीदवार, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। अमरीकी बहरिया में बदउनवानी और रिश्वत सतानी का सबसे बड़ा स्कैंडल, एक रेयर एडमिरल समेत अमरीकी बहरिया के 8 मजीद अफसरान पर फर्दे जुर्म आयद। जनूबी मुसिल का रेलवे स्टेशन दाइश के कब्जे से आज़ाद, स्टेशन के अतराफ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। स्कॉटलैंड की बरतानिया से अलहदगी के लिए एक बार फिर रेफरेंडम का मंसूबा, स्कॉटलैंड के इस्तकलाल में बरतानिया माने नहीं बन सकता, निकोला स्टर्जन का बयान। अफ्रीकी मुल्क मेडागास्कर में साइक्लोन ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 78 हो गई, 2,50,000 से जायद अफराद बेघर हो गए। व्हाइट हाउस में सऊदी नायब वली अहद की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का किसी भी किस्म के सवालों के जवाब देने से गुरेज। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी, दाइश के कब्जे से 3 मस्जिदों को आज़ाद करा लिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अदालत पर खुदकुश हमले में वकला समेत 35 अफराद जान बहक और 45 जख्मी हो गए।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी दारुल हुकूमत में होने वाले एक खुदकुश बम हमले में 35 अफराद जान बहक और 45 जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है कि इस हमले का हदफ दमिश्क में कसरे इंसाफ कहलाने वाली इमारत थी। बताया गया है कि एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को उस वक्त धमाके से उड़ा दिया जब पुलिस ने उसे अदलिया की उस इमारत में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। इस इमारत में एक इस्लामी ट्रिब्यूनल और एक फौजदारी अदालत कायम है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहां बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिससे हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। धमाके के बाद एम्बुलेंस और सिक्योरिटी हुकाम मौका पर पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुश हमला आवर फौजी वर्दी में मलबूस था। जब पुलिस ने उसे अंदर दाखिल होने से रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। हलाक होने वालों में बाज़ वकला भी शामिल हैं। ये गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान शामी दारुल हुकूमत में होने वाला दूसरा बड़ा बम हमला है। फौरी तौर पर किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते दमिश्क में 2 बम धमाकों में 74 अफराद जान बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे।
चीन ने खबरदार किया है कि अमरीका जनूबी कोरिया में जारी तनसीबात रोक दे, वरना सख्त इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। चीनी वज़ीर आज़म ली किंगचोन ने कहा कि चीन जनूबी कोरिया में अमरीकी थॉर्ड मिज़ाइल सिस्टम की तनसीब की मुखालफत करता है। उन्होंने खबरदार किया कि जनूबी कोरिया में थॉर्ड मिज़ाइल सिस्टम की तनसीब की सूरत में अमरीका को सख्त इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनूबी कोरिया में गैर मुल्की मुदाखलत का अंजाम एक ख़तरनाक जंग की सूरत में निकल सकता है, लिहाजा इससे कबल के मसला जंग तक पहुँचे अमरीका, जापान, शुमाली और जनूबी कोरिया को चाहिए कि बाहमी बातचीत के जरिए आपस के मसाइल को हल करें। इनका कहना था कि चीन कोरिया को डीन्यूक्लराइज करने का कायल है। उधर चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान गेंग शुआंग ने कहा है कि चीन को जनूबी कोरिया में अमरीकी मुदाखलत बिल्कुल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सालमियत के लिए हर तरह का इकदाम करने के लिए तैयार है और अमरीका को मुदाखलत के अवाकिब भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब अमरीका ने जनूबी कोरिया में मिज़ाइल तनसीबात रोकने की चीनी दरख्वास्त की भरपूर मुखालफत की है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका जनूबी कोरिया में तनसीबात जारी रखेगा। हॉलैंड में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जो मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक जारी रहेगी।
हॉलैंड में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जो मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में 28 सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। इसमें मुसलमानों की दाग पार्टी भी शामिल है। इंतखाबात में 3 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। हॉलैंड के इंतखाबात फ्रांस और जर्मनी के इंतखाबात में रुझान सेट कर सकते हैं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक हालिया इंतखाबात में फ्रीडम पार्टी PVV के मुसलमान मुखालिफ गीट विल्डर्स के वोट जीतने के इम्कानात कम रंग होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानेब मुसलमान पार्टी दांग ने 18 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। याद रहे कि गीट विल्डर्स ने अपने आप को इस्लाम मुखालिफ इकदाम की वजह से बदनामे जमाना बना दिया है। गीट विल्डर्स ने रवां साल ऐलान किया था कि वो इकतदार में आते ही सबसे पहले मुल्क में मसाजिद खुतबों हजाब और मुसलमान महाजरीन पर हॉलैंड आने पर पाबंदी लगा देगा।
अमरीकी बहरिया की तारीख में बदनवानी के सबसे बड़े स्कैंडल में एक एयर एडमिरल समेत अमरीकी बहरिया के 8 मजीद अफसरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फैट लियोनार्ड के नाम से शोहरत पाने वाले इस स्कैंडल में अमरीकी बहरिया के 200 से ज़ायद अहलकार मुलविस पाए गए हैं, जिन्होंने जापान में 7वें अमरीकी बहरी बेड़े पर तैनाती के दौरान सिंगापुर के एक दिफाई ठेकेदार फ्रांसिस न्यूलॉर्ड से कीमती घड़ियों, सिगार, शराब, 5-स्टार होटलों में मुफ्त कमरों और अय्याशी की सूरत में रिश्वत वसूल की थी। इसके इवज ठेकेदार ने अमरीकी बहरिया से साजो सामान और खिदमात की फराहमी की मद में $35 मिलियन इजाफी वसूल किए थे। अमरीकी महकमा इंसाफ मस्कूरा स्कैंडल की तफ्तीश पिछले 4 साल से कर रहा है, जिसने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी बहरिया के मजीद 8 आला अफसरान पर रिश्वत सतानी, गलत बयानी और धोखादही की फर्द जुर्म आयद की है। इस तरह फैट लियोनार्ड स्कैंडल में मुजरिम करार पाने वाले हाजिर सर्विस और रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स की तादाद 25 हो गई है। इराकी फ़ौज और पुलिस फोर्स के जवानों ने जनूबी मोसुल के अहम तरीन रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल को दाइश के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया। इराक की वफाकी पुलिस के सरबराह का कहना है कि पुलिस फोर्स के जवानों ने मोसुल के रेलवे स्टेशन के अलावा एक बस टर्मिनल को भी दाइशी दहशतगर्दों के कब्जे से आज़ाद करा लिया है। आज़ाद होने वाला रेलवे स्टेशन जनूबी इराक का एक अहम तरीन जंक्शन था, जहां से तुर्की, शाम, बगदाद और बसरा के लिए सामान की तरसील की जाती थी। इत्तलात हैं कि इस वक्त जनूबी मोसुल के कदीम इलाके में वाक़ एक और रेलवे स्टेशन के अतराफ में दाइशी दहशतगर्दों के साथ संगीन लड़ाई जारी है। तंग गलियों और सड़कों के बाइस इस इलाके में लड़ाई इंतहाई दुश्वार हो गई है, क्योंकि फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस इलाके के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे कि इराकी फौज 19 फरवरी से अब तक मगरबी मोसुल के 40% से ज्यादा इलाके को दाइशी दहशतगर्दों से आजाद करा चुकी है। स्कॉटलैंड ने एक बार फिर बरतानिया से अलहदगी का इरादा कर लिया। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने कहा है कि स्कॉटलैंड के इस्तकलाल में बरतानिया रुकावट नहीं बन सकता। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने खबरदार किया कि बरतानिया स्कॉटिश आज़ादी के लिए रेफरेंडम के इनेकाद में माने नहीं बन सकता। उन्होंने ऐलान किया कि वो बरतानिया से आज़ादी के लिए स्कॉटलैंड के बाशिंदों के लिए दूसरी बार 2018 में रेफरेंडम का इरादा रखती हैं। तहम इस मकसद के लिए स्कॉटलैंड को लंदन हुकूमत की मंजूरी हासिल करना पड़ेगी और लंदन की जानिब से ऐसी इजाज़त मिलने के इम्कानात नहायत कम हैं। 2014 में भी स्कॉटलैंड के बरतानिया से अखराज के लिए रेफरेंडम करवाया गया था, जिसमें 55% स्कॉटिश अवाम ने बरतानिया में रहने के हक में वोट दिया था। तहम ब्रेग्जिट रेफरेंडम में स्कॉटिश अवाम की अक्सरियत ने यूरोपीय यूनियन में शामिल रहने की हिमायत की थी। निकोला स्टर्जन ने 2014 में होने वाले रेफरेंडम के 2 माह बाद इक्तदार संभाला, जिसके बाद स्कॉटलैंड के मुस्तकिल रियासत बनने के लिए अपनी काविशें शुरू की। तहम बरतानिया आगाज ही से स्कॉटलैंड के इस्तकलाल की मुखालिफत कर रहा है और निकोला स्टर्जन के इस इकदाम को शरपसंदी और तफरका अंगेजी से ताबीर कर रहा है। अफ्रीका के जजीरानुमा मुल्क मेडागास्कर में साइक्लोन से हलाकतों की तादाद 78 तक पहुंच गई, जबकि 2,50,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिली मुल्क में गुज़श्ता हफ्ते तेज़ हवाओं के साथ आने वाले तूफान को कैटेगरी 4 का तूफान करार दिया गया था। इब्तदाई तौर पर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के नतीजे में 20 अफराद के हलाकत की इतलात सामने आई थी, लेकिन इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तूफान से मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके शदीद मुतासर हुए। वाज़ेह रहे कि मेडागास्कर दुनिया भर में वनीला की फराहमी में बड़ा हिस्सा रखता है, जबकि मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में ही इसकी ज़्यादा पैदावार होती है। मेडागास्कर के नेशनल ब्यूरो ऑफ रिस्क एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक तूफान से 2,50,000 अफराद बेघर हुए। साहिली मुल्क होने के बायस मेडागास्कर अक्सर समुद्री तूफानों की जद में रहता है। 2012 में यहाँ आने वाले समुद्री तूफान के नतीजे में 112 अफराद हलाक हुए थे।
व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी नायब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई।
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی فرما روا شاہ سلمان کے ولی عہد محمد بن سلمان کا استقبال کیا۔ نئے امریکی صدر کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی امور سے متعلق گفتگو کی اور فوٹو سیشن کیا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے کسی بھی قسم کے سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا۔ اس ملاقات میں نائب امریکی صدر مائک پینس، سینئر مشیر جیرڈ کشنر اور قومی سلامتی کے مشیر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک ساتھ لنچ بھی کیا۔
شامی فوج کی مشرقی دمشق میں کارروائی، داعش کے قبضے سے 3 مسجدوں کو آزاد کرا لیا گیا۔
شامی سیکیورٹی حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دمشق کے مشرق میں واقع الکبون اور اس کے اطراف سے 3 مساجد پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ داعشی دہشت گرد ان مساجد کو مختلف دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ادھر دیر الزور میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ شامی فوج کے ایک سینئر اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ دہشت گرد شہر میں واقع ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ واضح رہے کہ شام میں 2011 سے جاری مغربی حمایت یافتہ گروہوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں 400,000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بے ست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔